दिन भर 12 मई दिन शुक्रवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ईवीएम मामले पर सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने फिर दी पार्टियों को छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती।
The commission will hold a challenge and offer opportunities to political parties to demonstrate that EVMs used in the recently concluded...
यूरोप, अफ्रीका, एशिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे चीन ने आज नेपाल को भी किया साथ। क्या है चीन का इरादा? और विवेचना में याद करेंगे भारत के उस नौसेना अध्यक्ष को जिसने कराची पर करवाया था हमला।
एडमिरल नंदा प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, मैडम क्या आपको कोई एतराज होगा मैं कराची को अटैक करूँ? श्रीमती गांधी ने बोला, एडमिरल इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर।
पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। भारत में आज चुनाव आयोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका जताई। सभी दलों को उनकी बात रखने का मौका दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि वो राजनीतिक दलों को इस बात का मौका देगा कि वो ईवीएम मशीनों को हैक करके दिखाएं। इसके साथ ही आगे से सभी चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा, जिसमें वोट देने वाले को ये देखने का मौका मिलता है कि उसका वोट किसे गया। पाकिस्तान में एक बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 दूसरे लोग जख्मी हैं। ये जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने दी है। धमाका बलूचिस्तान के मास्तंग शहर में पाकिस्तानी सीनेट के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर हुआ। हैदरी का कहना है कि उन्हें मामूली चोट आई है, हालांकि वहां से आ रही खबरों में कहा जा रहा है कि इस हमले में उनके ड्राइवर की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर दी है। टीवी पर आ रही तस्वीरों में एक बुरी तरह से मुड़ी हुई गाड़ी दिख रही है। अमरीकी राष्ट्रपति ने जेम्स कोमी को स्पष्ट चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप जेम्स कोमी को अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक पद से हटा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जेम्स कोमी के लिए बेहतर होगा कि वो उनके साथ बातचीत के टेप लीक ना करें। खबरों में कहा जा रहा है कि इस तरह की कुछ बातचीतों के टेप जेम्स कोमी लीक करने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो उन जांच को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं जिनका नेतृत्व कभी जेम्स कोमी ने किया था। इनमें एक मामला उनके चुनाव अभियान और रूस के बीच कथित संबंधों का भी है। इस बीच टेक्सास की डेमोक्रेटिक सांसद शीला जैक्सन ने ट्रंप पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए एक विशेष अभियोजक की मांग की है। आइए वो करें जो राष्ट्रपति चाहते हैं। राष्ट्रपति इस जांच का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, वो इसे खत्म करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक हम एक विशेष अभियोजक रख सकते हैं। साथ ही सीनेट और संसदीय जांच भी चल सकती है। जैक्सन ली ने यह भी कहा कि उन्हें यह भरोसा नहीं है कि व्हाइट हाउस इस मामले की स्वतंत्र जांच करा सकता है। चीन के नए सिल्क रूट में सदस्य के तौर पर नेपाल भी शामिल हो गया है। ये रास्ता एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ेगा। वन बेल्ट वन रोड नाम की इस पहल के जरिए चीन जमीन और पानी के पुराने व्यापारिक रास्तों को फिर से चालू करना चाहता है। नेपाल में चीन की योजना काठमांडू को तिब्बती शहर ल्हासा से रेल के रास्ते जोड़ने की है। रविवार को चीन 28 देशों की एक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें इस पर चर्चा होगी। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के निंग जिघे ने कहा, चीन बेल्ट एंड रोड के रास्ते में पड़ने वाले देशों ने इसके देशों के साथ मिलकर इसके दायरे में उत्पादन क्षमता पर सहयोग से फायदेमंद नतीजे हासिल किए हैं। संयुक्त विमर्श, निर्माण और साझेदारी के सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण के बारे में जागरूकता, खुलेपन और संतुलन के साथ चलते हुए इन देशों ने फायदा ही फायदा कमाया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आइवरी कोस्ट के सैन्य अड्डों पर अशांति फैल गई है। वहां सैनिक इस ऐलान के बाद काफी गुस्से में हैं कि सरकार से उनके बोनस भुगतान की मांग वापस ले ली गई है। मुख्य शहर आबिजान और बाउके में सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाई और कई सड़कों पर यातायात बंद करा दिया। कई दूसरे शहरों में भी गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। सैनिक इस बात से नाराज हैं कि उनकी मांग वापस लेने से पहले उनसे मशवरा नहीं किया गया। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अपना जवाब देने के लिए बैठक कर रही है। इन सैनिकों में हजारों बागी सैनिक हैं और जनवरी में उन्होंने सरकार को इस बात पर मजबूर किया था कि हर सैनिक को 8,000 अमरीकी डॉलर बोनस के तौर पर दी जाए। इसी रकम की अगली किस्त इन्हें इस महीने में मिलनी थी। बीबीसी समाचार।
बारह मई शुक्रवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। इस साल हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से कुछ राजनीतिक दल लगातार ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे और इसी सिलसिले में आज निर्वाचन आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद आज पहली बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने खुलकर कहा कि पार्टियों को फिर से वो चुनौती देते हैं कि वो साबित करें कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी। पूरे ब्यौरे के साथ नितिन श्रीवास्तव।
चिलचिलाती धूप में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुक्रवार सुबह से पत्रकारों का जमावड़ा लगा था। लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि जिस अहम बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे उसे भारत के चुनाव आयोग ने बुलाया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे और आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले एक लाइव डेमो में ईवीएम से मिलती जुलती मशीन को दिल्ली विधानसभा के भीतर हैक कर दिखाने का दावा किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने उन सभी दावों को तब भी खारिज किया था और आज यानी शुक्रवार को बैठक के दौरान भी किया। बैठक के बाद शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त सैयद नसीम अहमद जैदी ने कहा,
ए डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द कमीशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट वाज मेड।
नसीम जैदी कह रहे थे कि सभी राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षित निर्माण प्रक्रिया, प्रशासनिक तरीकों से गुजरने की प्रक्रिया और इसके निर्माण से जुड़ी गुणवत्ताओं के बारे में बताया गया। इससे साफ पता चलता है कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। नसीम जैदी के शब्द। हाल ही में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ईवीएम पर एक स्टेटस पेपर रिपोर्ट भी जारी किया था जिसमें साफ लिखा है कि पिछले 23 वर्षों में आयोग ने 107 चुनावों में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। ईवीएम में छेड़छाड़ के ताजे आरोप उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुए जब बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र में आसीन भाजपा सरकार पर ये आरोप लगाए और भाजपा ने इसको खारिज किया। चुनाव आयोग ने भी ऐसी किसी गड़बड़ी को बेतुका और निराधार बताया था। बहरहाल शुक्रवार को चुनाव आयोग ने पहली बार एक बड़ी घोषणा तब भी की जब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने का खुला चैलेंज दे डाला।
द कमीशन विल होल्ड अ चैलेंज एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू पॉलिटिकल पार्टीज।
चुनाव आयोग की तरफ से सबसे खास बात कही गई वो ये थी कि आगे से हर चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट मशीनों के जरिए मतदाताओं को अपने डाले गए मत के प्रमाण की पर्ची मिलती है। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम चैलेंज की कोई तारीख तो नहीं घोषित की है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके आयोग द्वारा हैकथन न आयोजित करने पर अफसोस जरूर जताया है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। योगी के अलावा चार दूसरे लोगों पर दंगा भड़काने और समुदायों में नफरत फैलाने का आरोप है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी की ही सरकार के अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने से मना कर देने से क्या ये मामला खत्म हो जाता है? इसकी पड़ताल की फैसल मोहम्मद अली ने।
गोरखपुर के परवेज परवाज इन दिनों इलाहाबाद में मौजूद अपने वकील फरमान सिद्दीकी से सलाह मशवरा में मशगूल हैं। कोर्ट में नई अर्जी पेश करने की तैयारी हो रही है।
अदालत ने 7 जुलाई का टाइम दे रखा है और साथ ही साथ हमसे ये कह रखा है कि हम 10 दिन के अंदर जो है अमेंडमेंट एप्लीकेशन डाल दें, सप्लीमेंट्री डाल दें, तो वो 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह डाल दिया जाएगा अमेंडमेंट एप्लीकेशन और सेटलमेंट।
गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री पर 2007 गोरखपुर दंगा मामले में मुकदमा चलाए जाने की इजाजत नहीं दे सकती है। सरकार ने मामले में सबूत के तौर पर सौंपे गए वीडियो की प्रमाणिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल हो रहे हैं कि सबूत वाले वीडियो पर दिल्ली लैब से की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट लगभग 3 साल पहले प्रशासन को सौंपी गई थी तो उस पर अब सवाल क्यों? हालांकि पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम कहते हैं कि किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगना कुछ अधिक उम्मीद करने जैसा है।
यहाँ 20 साल 30 साल लगता है मुकदमा, अगर वो डायरेक्टली व्हेन ही इज नाउ इन पावर, अगर इनके ऊपर 15 साल पहले की किस्सा है, अभी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे वो क्या चीफ मिनिस्टर करेंगे या वो मुकदमा लड़ेंगे?
सुब्रमण्यम कहते हैं कि कई देशों में राष्ट्रपति और गवर्नर किसी तरह के मुकदमा चलाए जाने के दायरे से परे हैं। अमेरिका के बिल क्लिंटन का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि वहाँ भी उन पर मोनिका लेविंस्की मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सका था। लेकिन परवेज परवाज कुछ और कहते हैं।
जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त GST की ओपनिंग थी, और BSP ने भी इसको संडे बस्ते में डालने के लिए CBCID को हवाले कर दिया था। उसके बाद जब इसकी जांच शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत आ गई। तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, हम तो पॉलिटिक्स कर नहीं रहे हैं, और ये सवाल तो आप उनके किसी जिम्मेदारों ही से पूछिएगा, और बल्कि पूछ भी लीजिए, जैसे हमसे आप पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ भी लीजिए कि 2014 में प्रोसिक्यूशन पेंशन के लिए समाजवादी पार्टी की हुकूमत में गया था तो 2014 से लेकर 2017 तक वो क्यों ठंडे बस्ते में रखा हुआ था। अगर वो प्रोसिक्यूशन सेंक्शन हो गया होता तो आज इसमें जजमेंट आया होता और आज इसके एक्यूज शायद जेलों में होते, किसी महत्वपूर्ण पद पर न होते।
ये मामला मजहब और जाति के नाम पर दो समुदायों में नफरत फैलाने का है, जिसमें पूर्व BJP MP और चार दूसरे लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
BBC इंडिया पोल।
क्या 3 तलाक के मुद्दे के बहाने राजनीति की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इसे राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। क्या 3 तलाक ही मुसलमान औरतों की एकमात्र समस्या है? शिक्षा, रोजगार, बराबरी जैसे मुद्दे पर बहस क्यों नहीं होती? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
सिल्क रोड या सिल्क रूट प्राचीन रोमन और चीनी सभ्यताओं के बीच व्यापार का एक मार्ग हुआ करता था। चीन अब उसी सिल्क रोड को एक नए नाम से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। नाम है वन बेल्ट वन रोड। इस सिलसिले में इस रविवार और सोमवार को बीजिंग में 28 देशों की बैठक होने जा रही है। इनमें नेपाल भी शामिल है, जिसके साथ चीन ने आज एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। मैंने काठमांडू में इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे BBC संवाददाता महेश आचार्य से संपर्क कर वन बेल्ट वन रोड प्रयास के बारे में और जानकारी ली।
ये चीन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, और ये जो एंशिएंट सिल्क रोड है, पुरातन सिल्क रोड या रेशम मार्ग बोलते हैं, व्यापारिक मार्ग जिसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा जाता था, तो उसी का ये नवीनतम अवधारणा है, चाइना का ऐसा कहना है। और OBR के तहत 2 मार्ग है, एक तो हम बोलते हैं इसको सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और दूसरा है कि 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रोड। और इसका बात यह है कि एक जो सड़क और रेल मार्ग से एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ता है, और दूसरा ये ओशन के सी रूट से, ओशन के रूट से जोड़ता है। नेपाल इस दोनों रूट में नहीं पड़ता, फिर भी चाइना ने यह प्रश्न किया है कि जो मुल्क ये रूट में नहीं पड़ता फिर भी वो OBR के तहत समझौता कर सकते हैं, ताकि चाइना और जो संबंधित देश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कनेक्टिविटी में और ट्रेडिंग में, ऐसा करके पीपल टू पीपल एक्सचेंज में लगानी कर सकता है। सो इसलिए नेपाल के लिए भी ये OBR में समझौता करना एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा कहा जा रहा है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से, नेपाली एक्सपर्ट्स के तरफ से। और चाइना भी ये चाहता था कि नेपाल भी इसमें शामिल हो, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली नेपाल चाइना के लिए एक महत्वपूर्ण देश भी है।
ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जो विदेशी समीक्षक हैं वो थोड़ा सा उन्हें चिंता है, उनकी चिंता ये है कि चीन जो है वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और ऐसे देशों को जो थोड़े से उतने रूप से आर्थिक संपन्न नहीं हैं उनकी मदद करके बाद में शायद वो उसकी कीमत वसूलेगा। नेपाल में कोई इस तरह की चिंता है?
नेपाल में तो अभी तक वैसी चिंता नहीं है, लेकिन आपने जो बताया, आपने खासकर भारत, उसके जो एक्सपर्ट्स से और गवर्नमेंट से भी थोड़ा कंसर्न व्यक्त हो रहा है, इसलिए कि OBR जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, OBR के मातहती वो बन रहा है, और उसके प्रति भारत का थोड़ा चिंता इसलिए है कि क्योंकि वो कश्मीर के कुछ विवादित भूभाग से जाता है। और दूसरी ये है कि अमेरिका या भारत या और दूसरे पश्चिमी देशों के कोई एक्सपर्ट से मानते हैं कि चाइना का कहीं ये योजना, जो इकोनॉमिक मसल फ्लेक्स करने के जो ये धारणा है, कहीं ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वृद्धि करने के लिए तो नहीं, ऐसे चिंताएं जता जा रहे हैं। लेकिन एक हिसाब से आप देखें तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक जो लगानी से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आएगा ही, लेकिन चाइना ने ये कहा है कि ये दोनों जो संबंधित देश है, जो संबंधित क्षेत्र है, दोनों के हित के अनुरूप ही काम करेंगे। इसमें चाइना का कोई स्वार्थ नहीं है। चाइना का केवल एक ही स्वार्थ है कि विश्व जो है वो आर्थिक रूप से संग संग ही विकास के समृद्धि की राह पर जाए।
ये थे काठमांडू से बीबीसी संवाददाता महेश आचार्य।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
1965 तक पृष्ठभूमि में रही भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाह कराची पर मिसाइल बोट से हमला कर न सिर्फ वहां खड़े कई पाकिस्तानी युद्धपोतों को डुबो दिया था, बल्कि तट के किनारे बने तेल टैंकरों में भी आग लगा दी थी। इस हमले की योजना बनाई थी तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल SM नंदा ने। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था द मैन हु बॉम्ब्ड कराची। उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
जब 1971 का माहौल ऐसे बन रहा था कि लड़ाई का होना वाज अ पॉसिबिलिटी, तो उस वक्त हमारी मीटिंग्स काफी होती थी। प्राइम मिनिस्टर साहब पूछती थी पहले आर्मी चीफ को कि आपने क्या कहना है, फिर एयरफोर्स को, और फिर घड़ी की तरफ देखकर मुझे पूछती थी कि एडमिरल साहब आप क्या करेंगे। और उस वक्त ये ऑब्वियस हो जाता था कि वो यही सब सोच रहे थे कि नेवी तो फजूल चीज है, इनके ऊपर ज्यादा वक्त गुजारने का कुछ फायदा नहीं। तो उस वक्त मैंने ये थाम लिया कि कुछ भी हो, अगर इस वक्त लड़ाई होगी, नेवी हैज गॉट टू प्ले इट्स पार्ट।
ये आवाज थी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल SM नंदा की। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने उस समय के मशहूर अखबार ब्रिट्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लड़ाई होती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसे पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची तक ले जाऊंगा। मैं उस बंदरगाह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मेरा बचपन वहां बीता है। 1971 में जब लड़ाई शुरू हुई तो एडमिरल नंदा ने अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। 1971 की लड़ाई से पहले रूस ने भारत को ओसा क्लास मिसाइल बोट्स दी थी जिनका इस्तेमाल पश्चिमी तट के रक्षण के लिए किया जाना था। ये एडमिरल नंदा और उनके अधिकारियों के दिमाग की उपज थी कि वो इन मिसाइल बोट्स को टो कर कराची ले जाएंगे। दिन में वो कराची के तट से 250 किलोमीटर दूर रहेंगे और रात में मिसाइल बोट्स से हमला करेंगे। लेकिन इससे पहले राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी लेना जरूरी था। मिसाइल बोट पर कराची हमले में शामिल लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरत, जो बाद में कॉमोडोर बने, याद करते हैं।
हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो एडमिरल नंदा भी सिर्फ डिसीजन मेकर नहीं थे। अल्टीमेटली अक्टूबर 71 में वो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि मैडम आपको कोई एतराज होगा मैं कराची को अटैक करूं। श्रीमती गांधी ने बोला एडमिरल इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, तो परमिशन मिल गई,
परमिशन माना गया।
बिल्कुल
एडमिरल नंदा की इस दुस्साहसी योजना का नौसेना के अंदर ही काफी विरोध हुआ। एडमिरल नंदा अपनी आत्मकथा द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं।
एडमिरल कोहली ने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक पोतों के पास हमसे ज्यादा हथियार हैं और उनकी फायरिंग क्षमता भी हमसे बेहतर है, लेकिन हमारे चीफ का कहना है कि हमें कराची पर हमला करना ही है। कोहली के कहने का अंदाज ये था जैसे उनसे कमजोर संसाधनों के साथ कराची पर हमला करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर ये हमला सफल नहीं होता है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहां मौजूद हर शख्स की निगाह मेरी तरफ उठी लेकिन मैं चुप रहा। बाद में मैंने कोहली से कहा कि अगर आप इस ऑपरेशन से सहमत नहीं हैं तो मेरे पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है कि मैं रक्षा मंत्री के पास जाकर कहूं कि आपसे पश्चिमी बेड़े की कमान वापस ले ली जाए।
बाद में एडमिरल कोहली इस बात के लिए तैयार हो गए कि उन्हें जो भी आदेश दिया जाएगा उसे वो पूरा करेंगे। पहला हमला 4 दिसंबर की रात को मिसाइल बोट निपट, निर्घट और वीर ने किया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी विध्वंसक खैबर और माइन स्वीपर मुहाफिज को डुबोया बल्कि किमारी तेल टैंकों में भी आग लगा दी। दूसरा हमला 8 दिसंबर की रात में हुआ जिसमें पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स को अपनी मिसाइल का निशाना बनाने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरत ही थे।
जैसे ही मैंने चौथी मिसाइल फायर करी फिर वो पिजन्स दिमाग में थे, सो I paid a signal to my OTC. Sir, four pigeons happy in their nest. अजीब सा सिग्नल है बट दिमाग में आया और मैं नीचे के ब्रिज से ऊपर अपर ब्रिज पे जाने के लिए शुरू हुआ एंड सर आई एम रीजॉइनिंग. तो मैंने व्हील दिया और ऊपर को चल पड़ा और जैसे ही मैंने सीढ़ी पे पैर रखा दो तीन स्टेप्स थे बाहर जाने के लिए तो उनका जवाब आया दिस इज द बेस्ट दिवाली वी हैव एवर सीन. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट. भयानक कह सकते हैं, खौफनाक कह सकते हैं, और इंस्पायरिंग कह सकते हैं. नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सारा होराइजन आग में था और आग की लपटें 40-60 डिग्री ऊपर चढ़ रही थी. खुशी की बात नहीं हुई मेरे लिए, फ्रैंकली बताता हूँ. एक सेकंड के लिए तो मैं वहीं जम के रह गया था. फिर मैंने जल्दी से बाहर गया, ऊपर गया और आगे की तरफ मुँह कर लिया लपटों को पीछे छोड़ते हुए. इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट.
एडमिरल नंदा का एक और नोवेल आइडिया था कि कोई भी भारतीय पोत बंदरगाह में लंगर डाले न रहे बल्कि समुद्र की ओर रवाना हो जाए. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और एडमिरल नंदा के भांजे कमांडर अरुण सैगल याद करते हैं.
जब 71 में लड़ाई छिड़ी तो नेवल फ्लीट बॉटल अपनी हो जाए, इसलिए नेवल फ्लीट वॉज ऑलरेडी एट सी. मैं खुद एक यंग ऑफिसर था और जब लड़ाई छिड़ी तो हम तो कराची के साउथ थे, सील्ड एनवलप दिए गए थे. एक जगह पे सब प्लानिंग हो रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे. और एक अभी रिसेंटली पिछले साल एक RNAW ऑफिसर ने एक किताब निकाली, नेवी के जो प्लानर्स थे उन्होंने कहा कि सर आपको याद है मनोरा में कराची में क्या था, पर हमें कराची हार्बर की फ़ोटो चाहिए टू रीवैलिडेट एवरीथिंग. दो फोटोग्राफर्स को एक मर्चेंट शिप पे डाला गया. मर्चेंट शिप के डॉक्टर को बोला गया कि आप इनको ले जाइए, पेशेंट बना लेना. वो कराची हार्बर में गए, फ़ोटोएं ली और फिर दुबई से वापस आ गए थे. ये फ़ोटोएं मैंने खुद नेवी में देखी हैं.
एडमिरल नंदा ने 1971 में दूसरा बड़ा काम किया, भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत को पाकिस्तानी पनडुब्बियों से बचाना. उन्होंने विक्रांत को अंडमान में तैनात किया और पाकिस्तानियों की आंख में धूल झोंकी कि वो विशाखापट्टनम में खड़ा है. नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी उसकी टोह में वहां पहुंची, उसमें विस्फोट हुआ और वो वहीं डूब गई.
एडमिरल कृष्णन ने फॉल्स रिक्वायरमेंट्स रेज करी फ्यूल के लिए, खाने की सामग्री के लिए, पानी के लिए. जैसे कि विक्रांत ने विशाखापट्टनम में आना है, ओपन बाजार में लोगों को बोला कि भाई हमारे को 100 kg प्याज चाहिए, ये वो. और सिग्नल ट्रैफिक होता है वो भी फेक सिग्नल ट्रैफिक जनरेट किया गया. तो ऐसे माहौल बनाया गया कि विक्रांत आ रहा है. और फिर मेरे ख्याल से सामग्री भी जितनी भी ऑर्डर करनी थी वो पोर्ट में लाई गई. जो स्पाइस थे पाकिस्तान के वो मैसेजेस पाकिस्तान को फीडबैक दिए जा रहे थे कि विक्रांत आ रहा है, विक्रांत के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है. वो इंटर्न गाजी को डिप्लॉय कर रहे थे. जब समय आया तो गाजी विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर थी. हार्बर में एक चैनल होती है कि ये डेप्थ है, इसमें जहाज़ चल सकता है. तो जो नॉर्मल स्टाइल ऑफ ऑपरेशन होता है, पहले एस्कॉर्ट्स जाते हैं, वो हार्बर को क्लियर करते हैं कि माइन फील्ड नहीं है, कोई जहाज़ नहीं है, कोई पनडुब्बी नहीं है, ये सब करके. तो वो सब सिमुलेट किया गया और अल्टीमेटली विक्रांत तो अंडमान में था.
इसी लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आया जब अमरीका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला किया. एडमिरल SM नंदा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या आपने ये खबर सुनी है कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ रहा है. मैंने कहा जी हाँ. उन्होंने पूछा आप क्या करने जा रहे हैं. मैंने जवाब दिया क्या आप समझती हैं कि अमेरिका भारत के साथ युद्ध करना चाहेगा. उन्होंने पूछा आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं. मैंने कहा मैडम अगर वो हमारे पोतों पर हमला करते हैं तो ये युद्ध की कार्रवाई होगी. तब वो बोली क्या किया जाना चाहिए. मैंने जवाब दिया मैडम वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें दृढ़ रहना होगा. मैं अपने जलपोतों के कप्तानों को आदेश दे रहा हूं कि अगर उनका सामना अमरीकी जहाज़ों से हो तो वो अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज करें और उन्हें ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित करें. वो हंसने लगी. मैंने फिर एडमिरल कोहली से कहा कि सारे युद्धपोतों को इस बारे में बता दिया जाए.
एडमिरल नंदा की शख्सियत की खूबी थी उनका मानवीय पक्ष. वो छोटे से छोटे नाविक की राय लेते और उसका हालचाल पूछते. उनको नजदीक से जानने वाले वाइस एडमिरल एस के चांद याद करते हैं।
मुझे याद है मैं 68 में लेफ्टिनेंट कमांडर था बंबई में और ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे एज अ वाइस एडमिरल। एक दिन मैंने इनसे पूछा, सर माई वाइफ एंड आई वुड लाइक टू आपको घर पे खाने पे बुलाना चाहता हूँ। कहते जरूर आऊंगा और आप मानेंगे नहीं, वो एक हफ्ते के बाद मेरे साथ आके इन्होंने डिनर खाई और भी गेस्ट आए थे। ये ऐसे शख्स थे जो उनको कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ एडमिरल के घर जाऊंगा खाना खाने या कैप्टन्स के या कॉमोडोर्स के, छोटा लेफ्टिनेंट कमांडर इक्विवेलेंट टू मेजर आर्मी में मेरे घर भी आ गए थे।
एडमिरल नंदा को हर छोटी चीज जो खराब हो जाती थी को ठीक करने का बेहद शौक था।
वो सबसे छोटा काम अपने आप करने को तैयार होते थे। जैसे मैंने देखा हुआ है, किचन में जाएंगे कोई डिशेज हैं तो उनको खुद धो लेंगे और ठीक जगह पे लगा देंगे। तो वो डिफेंस कॉलोनी में रह रहे थे, देखा कि एडमिरल साहब किधर हैं, पूछते थे कि एडमिरल साहब ऊपर हैं, तो बेडरूम के दरवाजे पेंट कर रहे थे सफ़ेद पेंट, सारे हाथ वाथ पे लगा था। ये उनकी ट्रेट जो है उनके इनग्रेंड थी उनके अंदर, और हम डरते थे कि अगर हमारी गाड़ी भी खराब हो जाएगी उनके घर के बाहर तो उसके बाद आधे पुर्जे ही वापस रहेंगे क्योंकि वो उसको खोल करके ठीक करके
नौसेना के लोग उन्हें इस बात के लिए भी याद करते हैं कि उन्होंने नेवी में शॉर्ट्स पहनने और दाढ़ी न रखने का चलन बंद करवाया।
हम लोग जैसे ब्रिटिश नेवी में होता था शॉर्ट्स पहनते थे, तो इन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप शॉर्ट्स पहनना चाहते हो जरूर पहनो, पर आपको ऑप्शन है कि आप ट्राउजर व्हाइट पहन सकते हो, सेलर्स भी और ऑफिसर्स भी। इतने खुश हुए सब लोग, क्योंकि अब जो जैसे बढ़ते जाओ एज में टांगे जरा पतली हो जाती हैं, तो कोई टांगे पतली नहीं दिखलाना चाहता था, वो चाहते थे कि पैंट्स पहने और ट्राउजर्स पहने, और ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जब हमारे राजपूत सेलर्स जो थे स्पेशली वो छुट्टी में घर जाते थे तो उनको पूरी बियर्ड रखनी पड़ती थी या कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि राजस्थान में मूछें तो बहुत जरूरी होती है ना, तो ये बेचारे 10-15 दिन घर नहीं जाते थे जब तक थोड़ी सी मूछ ना निकल आए। किसी ने इनको कहा कि साहब ये हमारी तकलीफ है, इन्होंने वो भी कर दिया कि ठीक है आप आज से सिग्नल बना दिया नेवी में कि जो कोई मुस्टैश रखना चाहता है और बगैर बियर्ड के वो भी अलाउड है।
एडमिरल नंदा को औरतों को चार्म करने की कला भी आती थी। फील्ड मार्शल सैम मानिकशाह ने एक बार उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि इस मामले में आप मेरे गुरु हैं। एडमिरल नंदा की नतनी अमिता मेहरा बताती हैं।
उनके बेस्ट फ्रेंड्स तो मेरी ग्रैंडमदर की फ्रेंड्स थे, तो उनकी जो किटी पार्टी चलती ना, ही वाज अ लेडीज मैन, तो सब जो लेडीज है ना उनको वो चार्म कर लेते थे। सो उनके फ्रेंड्स कम थे, मेरे ग्रैंड मदर्स के फ्रेंड ज़्यादा थे, और फिर वो उनसे जिस कोई भी सामने आ जाए बस वो सोचता था कि भाई वो माई ग्रैंड फादर इज बेस्ट फ्रेंड। ऐसे वो वॉर्म थे कि बस उनको हग करते थे, उनका हाथ ही वुड शेक हर हैंड्स, और फिर अ लेडीज ही वुड चार्म हर आउट ऑफ अ विट्स। तो इनकी ऐसे आदत थी, पर आई डोंट नो वही ऐसा नहीं था कि वन और टू फ्रेंड्स, ये लार्ज सोशल सर।
भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में एडमिरल नंदा की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि भारतीय नौसेना बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन गई।
ये जब थिंकर थे, लॉन्ग टर्म थिंकर, इन्होंने देखा कि हम शिप्स जो हैं बाहर से मंगवा रहे हैं। इन्होंने शुरू करवाया एक प्रोग्राम लियांडर प्रोजेक्ट मैसेगन डॉक्स में, डिजाइन ले लिया यूके से, और वहां पे फर्स्ट लियांडर शिप्स जो बनी है थी वहां बनी थी। और उसके बाद में इनका हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट जो था नेवल आर्किटेक्ट, उनको उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। अब ये स्टेज आ गया है कि हम मे बी कैरियर भी 30-40% जो है वो इंडिजिनस आया है इसी डिजाइन डिपार्टमेंट से, और सबमरीन हम बाहर से जरूर लेते हैं बट जितने अदर बाकी जहाज बनते हैं सब यहाँ से यहीं डिजाइन होते हैं। ये किसने शुरू किया था? नंदा साहब ने, और इन्होंने इस पर बहुत जोर लगाया और आज हम बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन गए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एसएम नंदा पर रेहान फजल की विवेचना कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। आपसे अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।